खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए आज सुबह फिर हम कलाम पाक में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए खुदावंद यसु मसीह की अकल, उसकी समझ और यसु मसीह के बाप हमारे आसमानी खुदा का जो मोहब्बत नामा जिसे बाइबल मुकद्दस कहा गया है अपनी तरबियत और नसीहत के लिए खोलें। तो नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पांचवा बाब, आज हम छठी आयत पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस हद तक खुदा के कलाम को जगह देते हैं। और जब जब हम अपनी जिंदगी में हर रोजमर्रा के फैसलों में, रोजमर्रा के चुनावों में, रोजमर्रा की जिंदगी में जब खुदा को अपनी जिंदगी में उसके कलाम को अहमियत देते हैं, तो हम उन बेफायदा बातों से परहेज करते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं। इसलिए ईमानदार होते हुए हमने कल सीखा था कि पालूस रसूल कहता है कि जो नींव पड़ी हुई है वो यीशु मसीह है। न्यू यानी कि वो बुनियाद जो यीशु मसीह है। कोई तो उस पर सोने चांदी और बेशकीमती पत्थरों का क्या रखता है, रदा रखता है, बुनियाद रखता है, शुरू करता है, इमारत बनाता है, लेकिन कोई घास फूस लकड़ी का रदा रखता है। वो दोनों बातें सोना चांदी बेशकीमती पत्थर रूहुल कुद्दस से किए गए, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में किए गए काम है। रूहुल कुद्दस की हदायत से किए गए वो तमाम क्या कहते हैं जिंदगी के फैसले हैं जिनसे फायदा होगा, ना कि इस जमीन पर बल्कि आने वाली जिंदगी में। और मेरे पादरी साहब अक्सर ये कहते हैं कि आज तुम फैसला करोगे तो कल तुम्हारा फैसला तुमको उसका नतीजा दिखाएगा। अगर आज हम बुरा फैसला करेंगे तो कल उसका बुरा नतीजा निकलेगा, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से जिस्म के लिए जिस्मानी फसल काटेगा, और जो कोई रूह से बोता है वो रूह के लिए रूहानी फसल काटेगा। इसलिए आज हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि उन बेफायदा बातों को, रस्मों को, तरीकेकारों को जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि हम इंसान होते हुए, जैसे बनी इसराइल कौम को 10 हुक्म दिए गए थे कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना, तू किसी गैर महबूद के आगे ना झुकना, तू माँ बाप की इज्जत करना, खून ना करना, जना ना करना, पड़ोसी की चीज का लालच ना करना, अपने पड़ोसी के बीवी के बारे में बुरा ना सोचना, वगैरह वगैरह। तो उन 10 हुक्मों को लेकर यहूदियों ने कितने बना दिए, 610 हुक्म। उन्हीं 10ों हुक्मों को उन्होंने तब्दील करके 610 हुक्म बना दिए, जिनमें वो अपना रूहानी फायदा ढूंढते थे, लेकिन उनसे कोई फायदा ना हुआ। और इसे हम यू कह सकते हैं कि इंसानी इंसानी कोशिश जब किसी एक मसले का हल निकालने का सोच विचार करती है तो 10 मसले पैदा होते हैं, लेकिन खुदा जब एक मसले को हल करता है तो उसके 10 फायदे निकलते हैं। हम एक फैसला करते हैं कि किसी बात को दुरुस्त करें तो उसके लिए 7-10 मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आए इस सच पर गौर करें और आज अपनी जिंदगियों पर देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है। जब वो बरसता है तो वो हर तरह की उन नामनासब बातों को चकनाचूर कर देता है। सो इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पांचवा बाप, उसकी छठी आयत। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। कड़वा है लेकिन सुनना है, किसी ना किसी को कहना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी घबराता था, जब यिर्मयाह नबी छोटा सा था तो खुदावन ने कहा कि मैंने तेरे मुंह को छुआ है, अपना कलाम तेरे मुंह में रखा है, और उसने कहा कि मैं डरता हूं, वो बहुत जवान है, वो ताकतवर है, वो जोरावर है, वो मेरी नहीं सुनेगा। पिछले दिनों से यही बात मैं भी खुदा से कह रहा हूँ, खुदावन खुदा कलीसिया बहुत सी रस्मों में फंसी हुई है जो तेरे कलाम में भी नहीं पाई जाती। अगर मैंने पुकारना, अगर मैंने बताना शुरू किया तो वो मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। खुदा खुदा अगर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये रस्म ये तरीका जो सिर्फ इंसानों ने बनाया हुआ है गलत है तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन खुदा ने कहा हौसला रख, जो मेरी तरफ है वो मेरा कलाम सुनेगा, ना कि इंसानी रस्मों को और हुक्मों को दर्जा देगा। इसलिए आज अपने कानों को अपने दिलों को सख्त ना कीजिए जो कुछ हम सीखने वाले हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह फरमाता है कि अगर तुम आज के दिन उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करना, जैसे बियाबान में बनी इसराइल कौम ने किया। और खुदा ने क्या उनको कहा था, मेरे साथ निकालें बेफायदा बातें, खरूज 20 बाब, खरूज की किताब उसका 20 बाब, बेफायदा बातें। कोई आपको और मुझको बेफायदा बातों से, रस्मों से, उन खाली अल्फाजों से जो इंसानी सोच ने तैयार किए हैं धोखा ना दे। इसलिए गौर से सुने, ये खुदा के कलाम में से है। 20 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, तो खुदावन खुदा ने ये सब बातें फरमाई के खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मिस्रियों के मुल्क से खुदा ने बनी इसराइल कौम को वो निकाल के आजादी बख्शी, और उसने कहा कि वो खुदा मैं हूं। आपको और मुझको गुनाह की गुलामी से निकाला। हम सब ये बात बहुत से लोग नहीं बताते, कोई भी मसीही पैदा नहीं होता, हम में से कोई भी मसीही पैदा नहीं होता। हम मसीही खानदानों में पैदा होते हैं लेकिन चुनाव करते हैं जैसे मूसा ने चुनाव किया, जैसे मूसा ने चुनाव किया कि बादशाह का बेटा होते हुए, बादशाह की बेटी का बेटा होते हुए, सारी शानो शौकत को देखते हुए, हर तरह की बरकात को रखते हुए, मिस्र में शहजादा बनने की बजाय उसने चुनाव किया कि जिंदा खुदा की पैरोकारी करे। ये बाइबल में लिखा है। अब्रानियों 11वां बाब उसकी गालमन 23वीं आयत में लिखा है कि मूसा ने मिस्र के तमाम खजानों को, तमाम बरकात को, उस तमाम शानो शौकत को छोड़कर मसीह के लिए लान तान को कबूल किया। तो कोई भी मसीही पैदा नहीं होता, खा पादरी का बेटा है, खा बाऊ का बेटा है, खा बिशप, खा कोई और हो। आपको याद है यीशु मसीह की कहानी कि यहूदियों का सरदार निकोदीमस आधी रात आकर कहता है कि मैं क्या करूं के खुदा की बादशाही का वारस हूं या उस बादशाही में दाखिल हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। तो मसीही बनने के लिए हमें यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। इसलिए क्या लिखा है, तीसरी आयत, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। हम बहुत दफा हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं कि उनके 3 लाख खुदा है, कहते हैं ना जी, सूरज पानी का खुदा, खुशबू का खुदा, मोहब्बत का खुदा, फसल का खुदा, लड़ाई का खुदा, बचाने वाला खुदा, मन का देवता। मैंने आपको कल बताया था कि उन सब की जिसमें से तकरीबन 5-6 की हम प्रस्तुति करते रहे हैं। इसलिए आज हमें अपनी जिंदगी में देखनी है कि वो कौन सी बातें हैं जो बेफायदा है। तीसरी आयत, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू तू अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। आज हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हमने मसीहत में कौन सी बातें बेफायदा दर्ज की हुई हैं। उसी तरह जिस तरह यहूदियों ने की थी, 10 हुक्मों को 610 बना लिए, आज हमने, आज मसीहत में हम हिंदुओं को कहते हैं कि वो बुत प्रस्त हैं, हम अपने बारे में सोचते ही नहीं। हमने कौन सा बुत बनाया हुआ है? दिल थाम के सोचें, क्या यीशु मसीह का बुत हमने बनाकर क्या किया हुआ है? पतरस का बुत बनाकर हमने क्या किया हुआ है? क्या यहां पर लिखा है कि पतरस का या यीशु मसीह का या मुकस्सा मरियम का? बड़ी तेज और बड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन खुदा ने कहा है कि तू बोल, जो मेरी तरफ होगा वो टिका रहेगा, जो मेरा कलाम बर्दाश्त करेगा वो बरकत पाएगा। नहीं तो ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह के साथ हजारों हजार की भीड़ थी, और जब यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब उठाए और अपने माँ बाप और बहन भाई का और सबका जो उनको अजीज हैं, अगर मुझको आला दर्जा देगा तो वो मेरा शागिर्द कहलाएगा। तो याद है कितने बचे? यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद 120। 120 की जमात पर रूहुल कुद्दस नाजल हुआ, बाकी सब कहने लगे ये नागवारा कलाम है, बर्दाश्त से बाहर है, यीशु मसीह को क्या हो गया है? सो कोई तुमको पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया में, जो रोम का शहंशाह था, उसका क्या था? तख्त था, उसका बुत था, और रोम के शहर के जितने भी लोग वो रोम के शहंशाह को अपना खुदा और अपना खुदावंद और मालक मानते थे। पालूस रसूल उनको कहता है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। उन्होंने खुदा की बजाय रोम के जो शहंशाह था उसको अपना क्या बना लिया? मालक और खुदावन बना लिया। इसलिए हमें ईमानदारों को इन बातों पर गौर करने की जरूरत है कि आज हमने कौन से गलत और बेफायदा बातों को अपनी जिंदगी में जगा दी। क्या इन बातों से हमें फायदा है? बहुत सी बातें हैं, जैसे मत्ती की अंजील उसके 23वें बाब में हमें जिक्र मिलता है कि क्या उन्होंने किया। मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब मेरे साथ देखें, फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम यीशु मसीह के कलाम को अहमियत देंगे या इंसान के कलाम को।
इस बार
मत्ती की इंजील से पहले मरकस 7 बाब निकाले मेरे साथ जी, मरकस की इंजील उसका 7 बाब। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्द और यीशु मसीह के शिगिर्दों का सामना किन से है? फकीयों और फरीसियों से है, और वो यीशु मसीह के शिगिर्दों पर इल्जाम लगाते हैं, ये खाने पीते खाते पीते वक्त हाथ नहीं धोते, इसलिए ये नापाक हैं। तो सारी बातचीत चल रही है और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? 5वीं आयत, 7वां बाब, 5वीं आयत। पर फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? क्या लिखा है? बुजुर्गों की रवायत, उनकी अपनी बनाई हुई रवायत। उसने उनसे कहा, यशायाह नबी ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की, जैसा कि लिखा है, ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। यीशु मसीह ने उनके मुंह पर कड़वा कलाम किया, और बार बार हमें फिल्म में भी देखने को मिलता है कि हाँ यीशु, तू सच सिखाता है और तू सच्चा है। और कुछ यकीन कर गए, लेकिन कुछ क्या रहे? सख्त दिल रहे जिस तरह फराउन। और आगे क्या लिखा है? ये बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं। बेफायदा यानी कि कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। आज हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हमने हिंदुओं से, अपने पड़ोस मुस्लिम लोगों से या मसीहत में कौन सी बेफायदा बातों को फरोग या बढ़ा लिया है जिनसे फायदा नहीं। क्योंकि आसमान पर, हम जमीन पर तो उनसे करते रहेंगे। ईमानदार होते हुए याद रखें, आपकी निजात कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। हमेशा की जिंदगी के मालिक हैं। लेकिन बात हो रही है कि कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। आसमान पर कैसा मकान चाहते हैं? कि आपके मकान पर, आपकी जो जगह, जो मेरास है खुदावन खुदा में, जैसे हम जबूर में गाते हैं, सुथरा मेरा हिस्सा ते सुथरा मेरे बकरा, ओ है जगह सोनी, सुथरा मेरा हिस्सा और मेरी मिरास। सुथरा हिस्सा चाहते हैं या फिर टाट का या पुराली का एक बांस वाला तंबू चाहते हैं कि एक साइड पर बैठे हुए कहें, मैं यीशु मसीह में ईमानदार हूं, हालेलुया, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या है यीशु मसीह को पेश करने के लिए? तुम्हारी मिरास क्या है? बेफायदा बातों से हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुदा कहता है कि बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकामात की तालीम देते हैं। यहूदी रहनुमाओं में बहुत से 610 हुक्म जो गिनने में पाए जाते हैं, उन्होंने बढ़ा चढ़ा लिए 10ों हुक्मों को। इसलिए वक्त कम है, हम 23वें बाप में नहीं जाएंगे। मेरे साथ देखें गलतियों, गलतियों 4 बाप। गलतियों 4 बाप, कलीसिया फिर उन्हीं बातों की तरफ जाती है जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आजादी दी थी, जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुमको कोई फायदा नहीं, मेरे पास आओ तुमको फायदा ही फायदा होगा। गलतियों 4 बाप उसकी 8 आयत देखें। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन मबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं। कलीसिया को याद दिलाएगा कि तुम पहले, जैसे हम, मैंने अपने दादाजी से पूछा कि हम कहाँ से आए जी? इंडिया से। और हम सब कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले हम सब कहाँ से आए हैं? पाक हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान से आए। और हमारी जड़ें कहाँ हैं? हम किसी ना किसी देवता की इबादत करते थे। आज जो कब्रस्तान में मसीहियों का कब्रस्तान है, वहां पर जो 3 मकबरे बने हुए हैं, वो कहाँ से आए? क्यों आज बहुत से लोग मेरे दादा की, चाचा की, परदादा की पूजा करते हैं? क्योंकि वो सच से वाकिफ नहीं है। अदालत घर से शुरू होगी, यानी कि हर एक को अपना अपना जवाब खुदा को देना होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में देखें वो कौन सी बेफायदा बातें हैं जिनसे हमें कोई नफा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 10वीं आयत देखें, तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और बरसों को मानते हो। यहूदियत में दिन मुकर्रर थे कि ये दिन मानना है, ये साल मानना है, ये महीना मानना है, इसमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। यहूदियत के उन तमाम रस्मों को मसीहत के लोगों ने, गलतियों की कलीसिया ने क्या किया? अपना लिया। और कहा कि हाँ, जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं, हमें भी वैसा करने की जरूरत है। लेकिन पालूस उनको क्या करता है? मलामत करता है। पालूस कहता है, मुझे तुम्हारी बाबत डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। पालूस नहीं चाहता कि जो खुदा का कलाम उसने जिंदगियों के लिए किया है वो बेफायदा ठहरे। इसीलिए पौलुस दिन रात कैद खाना में, सफर की हालत में, तूफानों की हालत में, ठंड की हालत में, भूख की हालत में, बैंत खाने की हालत में, हर हालत में इतना क्या कहते हैं कि जिद्दी रहा। हम जिद्दी के लफ्ज को बहुत दफा कहते हैं कि ये जिद्दी है। जिद्दी गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है और मुस्बत तरीके से, यानी कि पुख्ता हो जाना कि मैंने इस काम को करना है, मैंने इसकी जिद कर ली। तो पालूस रसूल ने अपने दिल में थाम लिया था कि सवाए मसीह और मसीह की सलीब के कुछ और बयान ना करूंगा। तो इसलिए पालूस कहता है कि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंसानी अहकाम और वक्तों और दिनों और महीनों में फंस जाओ और मेरी मेहनत बेफायदा जाए। इसलिए अब आप सब पर यह बात छोड़ता हूं कि अपनी अपनी जिंदगी में देखें। मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि कोई ऐसी बात तो नहीं जो बेफायदा है, जिससे यीशु मसीह को, खुदा बाप को और उसके कलाम को मेरी जिंदगी में कोई तलब ना हो। अगर कोई बेफायदा बात आपकी जिंदगी में है, खामंद होते हुए, बीवी होते हुए, बेटा होते हुए, मुझे खुदा का खादम होते हुए, बुजुर्ग होते हुए, बच्चे होते हुए, हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। हम सब खुदा का कलाम जो आज सुनाया गया है, ये बेतासीर नहीं लौटेगा। इसलिए हम सबको अपनी जिंदगियों में इस बात को जांचने की जरूरत है, ताकि कोई हमसे हमारा जिंदगी का ताज ना छीने। जिंदगी का नहीं, माजर चाहता हूं, ताकि कोई हमारा ताज हमसे ना छीने। ताज, ऐसा अनाम, ऐसी मिराज, ऐसा सेहरा जो मुरझाने वाला है। इसलिए इस बात पर खत्म करना चाहता हूं। पहला ग्रंथी उसका 9 बाब उसकी 25वीं आयत, दौड़ में दौड़ते तो सभी है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। कौन कौन जीतना चाहता है? हम सब। जब फरिश्तगान की परेड होगी, खुदावंद यीशु मसीह तख्त पर बैठा होगा, तो आवाज मारी जाएगी, फलां ईमानदार फलां शहर का आए और अपना अनाम पाए। अब्रानियों 3 या 2 बाब में जिक्र मिलता है कि ये नए यरूशलेम के जब जमीन पर उतरना होगा, तो बहुत बड़ी जमात होगी। खुदा के फरिश्ते और वो तमाम नाफरमान फरिश्ते देखेंगे कि खुदा का बंदा लतीफ, जवेद, बाजी जी, माँ जी, बाबू जी, भाई बिल्लू, भाई मनीर, आतफ, काशफ, नदीम, माजद, फैसल और कोई, कि उसे ये इनाम मिलने वाला है। ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। हम सब जीत पसंद करते हैं, हार कोई भी पसंद नहीं करना चाहता। इसलिए आए इस जमीन पर सीखें कि उन तमाम बेफायदा बातों से जिनसे हमें धोखा हो सकता है, उनसे परहेज करें। जबूर 115 इसी बात के बारे में कहता है, जैसे लाबन की बेटी राहल ने उसके बुतों को चुरा कर उस पर बैठ गई और उसने कहा कि मेरे खुदाओं को किसने चुरा लिया। जबूर 115 ये कहता है कि वो हाथ के बनाए हुए इंसान की दस्तकारी है, खुदा ने कभी भी किसी को देखा और हम देखेंगे रूबरू। इसलिए कोई ऐसा नाम नहीं है जिसकी हम आगे अपने सिर को झुकाएं। आए हम दुआ करें।